તારીખ 19/7/1993 શ્રી પરમાગમસાર બોલ નંબર 400 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 77
कि उसमें उसी वक्त बहुत कलुषता रहती है, क्लेश रहता है और उसके फल में भी दुख ही दुख रहता है। वर्तमान में भी क्लेश होता है, भविष्य में भी उसके फल में क्लेश ही होने वाला है। इसलिए जिनको मुक्त होना हो या जिसको दुख से मुक्त होना हो, जिसको जन्म मरण से मुक्त होना हो, उसको दोष से मुक्त होना चाहिए, अवगुण से मुक्त होना चाहिए। यही धर्म के परिप्रेक्ष्य में सारी जो विचारधारा है वो उसी लाइन पर चली है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि परिणाम में भाव शुद्ध होगा तो ऐसे शुद्ध भावों से शाश्वत आत्मा भी शुद्ध ही रहेगा, पवित्र भाव से रहेगा, पवित्र परिणाम से रहेगा और उनको सुख शांति मिलती रहेगी। जो सुख शांति है वो पवित्रता में है, मलिनता में सुख शांति कहीं नहीं होती है। आनंद स्वरूप अब क्या कहते हैं, तो आत्मा कैसा है तो सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिद आनंद ऐसे तीन शब्द हैं आत्मा की, वो विशेषताएं हैं। ऐसे तो आत्मा में अनंत गुण है लेकिन ये मुख्य गुण है सत। मैंने सत्ता का होना, सत मैंने हयाती मौजूदगी का रहना, उसको सत कहते हैं। आत्मा सत है मैंने शाश्वत है, शाश्वत आत्मा को सत कहते हैं। चित मैंने चैतन्य पना, ज्ञान पना, आत्मा में ही ज्ञान है, परमाणु में ज्ञान नहीं है, जड़ पदार्थ ज्ञान रहित है, आत्माएं जो है वो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान वो आत्मा का स्वरूप है। सत चित और आनंद भी एक आत्मा का प्रॉपर्टी है। जो भी आत्मा की शक्ति है वो आत्मा की प्रॉपर्टी गिनी जाती है। जो साइंस जो लोग पढ़े हैं उसको पता होगा कि हर एक पदार्थ को अपनी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मैंने क्या, उसमें रही हुई शक्ति, उसमें रहे हुए गुण। तो आत्मा में जो गुण है, जैसे आनंद गुण है वो आत्मा की प्रॉपर्टी है, जैसे ज्ञान गुण है वो आत्मा की प्रॉपर्टी है। जैसे गुरुदेव दृष्टांत देते थे, हमारे लिए जो छोटी पीपर आती है, वो छोटी पीपर जो होती है उसको घिस करके खरल में घिस करके 64 पोर लगातार अंतर पड़े बिना 64 पोर तक अगर उसको ढूंढते हैं तो वही जो पीपर है उसमें इतनी शक्ति पैदा होती है घर्षण के कारण, उसमें चीज उसके सत्व में वो बात रही है। छोटी पीपर का ये सत्व है, उसको डेवलप करता है। कैसे डेवलप करते हैं, घिस करते हैं। तो कैसे भी सब्जी है उसको तोड़ने के लिए वो काम में आ जाती है। ऐसे खाल में तो इतना काम नहीं देगी वो। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें शक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार से होती हो उसी प्रकार से उसका विज्ञान के अनुसार, वैसे हमारी आत्मा में आनंद शक्ति है। वो कितना आनंद है, उसमें बेहद आनंद है। कितना है चैतन्य, कितना है बेहद चैतन्य। आप कहेंगे तो माने कैसे, कैसे विश्वास करेंगे इस बात पर, क्योंकि अभी आनंद आ ही नहीं रहा है। लेकिन हम आनंद क्यों चाहते हैं और हमेश के लिए क्यों चाहते हैं, और दूसरा एक सबूत है उसका कि जो हमारे चैतन्य आत्मा है वो कभी जड़ नहीं होती, जड़ परमाणु कभी चैतन्य नहीं होता क्योंकि उसकी जड़त्व की प्रॉपर्टी अनंत है, उसका अंत नहीं आता। वैसे हमारे आत्मा में जो चैतन्य पड़ा है उस चेतनता कभी नाश नष्ट नहीं होती, खत्म नहीं होती। कोई कैसी भी मशीनरी हो उसको डेप्रिसिएशन लगता है, शरीर भी काम लेकर के जर्जरित हो जाता है, अशक्त हो जाता है, डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन आत्मा को कोई डेप्रिसिएट वैल्यू नहीं होती। अगर इनकी शक्ति को विकास करें, इसका विज्ञान ही उसे क्या होता, तो ये ज्ञान अनंत पैदा हो सकता है। यहां बैठे बैठे दुनिया भर का ज्ञान हो जाता है। किसे कहते हैं हम यहां इस कमरे में बैठे रहे और हम ये कह सकते हैं कि उधर वो ऊपर आ गए, इधर वो ऊपर आ गए, ऐसा ज्ञान में ताकत है। ऐसा आनंद भी ऐसा है, तो अनंत आनंद विकसित हो सकता है। ऐसी आत्मा में प्रॉपर्टियां कितनी है कि जिसकी कोई गिनती नहीं कर सके उतनी है। अनंत शक्तियां है, एक एक शक्ति में अनंत पावर है। लेकिन अगर हम मेले भाव करते हैं तो ये शक्ति है वो एकदम सिकुड़ जाती है, सर्वनाश तो उसका होता ही नहीं। लेकिन जैसे पशु हो जाता है तो उसके ज्ञान की कमी हो जाती है। पशु में भी पंचेंद्रिय से कोई चार इंद्रिय वाला हो जाता है, कोई तीन इंद्रिय वाला होता है, कोई दो इंद्रिय वाला हो जाता है, कोई एक इंद्रिय हो जाता है, तो उसके ज्ञान की बहुत कम हो गई। ऐसे क्यों ऐसा हुई कि उसने ऐसा मैले परिणाम किया, इसलिए। तो ऐसे जो परिणाम शुद्ध करें तो इसकी जो शक्ति है वो विकास होती है और ज्ञान को निराकुल शांति और आनंद को हमेश के लिए भोग सकता है। तो कहते हैं कि आत्मा के लक्ष्य से आत्मकल्याण इसको कहते हैं। आत्मकल्याण किसको कहते हैं कि आत्मा सुखी हो उसको आत्मकल्याण कहते हैं, आत्मा दुखी हो उसको आत्मा का अकल्याण कहते हैं। ऐसे परिणाम अगर भाव शुद्ध होते हैं तो शुद्ध परिणाम शुद्ध रूप से शुद्ध अशाश्वत आत्मा के साथ शाश्वत रहेंगे और आनंद स्वरूप नायक स्वरूप, आनंद स्वरूप और नायक स्वरूप सच्चिदानंद कहां है, सत्स्वरूप नायक स्वरूप आनंद स्वरूप, ऐसा भगवान आत्मा देखिए क्या गुरुदेव कहते हैं। संसारी होते हुए भी उसको क्या कहते हैं, भगवान आत्मा। जैसे मुक्त आत्मा को भगवान कहते हैं, ऐसा सत्व देख करके, क्या जैसे लिंडी पीपर में 64 कोरे का सत्व है, ऐसा सत्व देख करके यहां भी ऐसा संबोधन करते हैं कि तू भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा है इसका मतलब क्या कि तू चाहे तो मुक्त आत्मा हो सकता है। मुक्त आत्मा को ही भगवान कहते हैं, चाहे तो मुक्त आत्मा हो सकता है। कैसे, पवित्र परिणाम, पवित्र भाव करेगा तो, मेले भाव करेगा तो संसार में भटकना होगा। ऐसे ज्ञान ज्ञाय स्वरूप भगवान आत्मा का अद्भुत आश्चर्यकारी गहन स्वभाव है। स्वभाव मैंने प्रॉपर्टी क्या, जैसा पानी का स्वभाव ठंडा है, उसको कोई गर्म कर देता है तो भी ठंडा करने के लिए कोई जरूरत, वैसे ही ठंडा हो जाएगा पानी। गर्म करने के लिए साधन चाहिए, ठंडा करने के लिए नहीं। ऐसे आत्मा को जो स्वभाव है वो तो अद्भुत है, आश्चर्यकारी है और गहन भी है। ये तीन बात गुरुदेव ने इसलिए कही कि हमारी इसको जानने के लिए कोई जिज्ञासा पैदा हो। आश्चर्यकारी मैंने कहा तो वो भी दिखाया नहीं, अज्ञानता ने दिखाया, उनके लिए कहेंगे कि अगर आत्मा का आश्चर्यकारी स्वभाव तुझे देखना है तो इस देखने की जो कार्य पद्धति है उस कार्य पद्धति को हम सिखाएंगे। उस कार्य पद्धति से तुम्हें अपना आत्मा जितना आश्चर्यकारी स्वभाव वाला है वो दिखने में आएगा, तो उसमें आश्चर्यकारी सुख शांति और आनंद है, आश्चर्यकारी ज्ञान दर्शन है, आश्चर्यकारी प्रभुता और ईश्वरता है, आश्चर्यकारी विभुत्व है, आश्चर्यकारी अस्तित्व है। ऐसे संविधान में तो अपने 47 की उम्र तो बात नहीं है अलग अलग प्रकार के, लेकिन ऐसे बहुत है। तो कहते हैं कि ऐसा बहुत अद्भुत और गहन स्वभाव है, उस स्वभाव का लक्ष्य करना, लक्ष्य करना मैंने क्या कि जो हटे नहीं उसको लक्ष्य कहते हैं, जहां से ज्ञान हटे नहीं ऐसे ज्ञान को लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्मीना का कोई जीव नहीं, लेकिन संसारी जीवों का लक्ष्य कहां है? संयोग पर है। तो एक संयोग दूसरा संयोग तीसरा संयोग, संयोग पूरा लक्ष्य उसका शुभता नहीं, संयोग का विषय अलग अलग रह जाता है लेकिन लक्ष्य शुभता है क्या? संयोग का ही लक्ष्य निरंतर रहता है। तो अपना अनुभव से देख लेना कि लक्ष्य क्या चीज है। जैसे व्यापारी है उसका क्या लक्ष्य है? पैसा कमाना है। व्यापारी लोग हैं इसलिए ये दृष्टांत हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं तो हमारा लक्ष्य कहाँ रहता है? तो पैसा कमाने में रहता है। हम चाहे जैसी प्रवृत्ति करें, चाहे नौकरी करें तो भी पैसा कमाना है, व्यापार करें तो भी पैसा कमाना है, इंडस्ट्री लगाए तो भी पैसा कमाना है, उसमें अनेक प्रकार की प्रवृत्ति होती है, सब में कॉमन क्या है लक्ष्य? सामान्य बात, तो पैसा कमाना ये हमारा लक्ष्य जैसा है, वैसा आत्म शांति कमाना मुख्य काम है। क्या शब्द लिया है आचार्य महाराज ने समय सार में? मोक्ष की कामना जिसको होती है, कामना उसको कहते हैं कि वो लक्ष्य हटे नहीं। जैसे पैसा का लक्ष्य हटता नहीं, वैसे हमारे आत्म शांति और आत्मा की पवित्रता का लक्ष्य जिसको नहीं हटे उसको आत्म लक्ष्य कहते हैं। तो आत्म लक्ष्य मैंने स्वभाव लक्ष्य, स्वभाव लक्ष्य मैंने आत्म लक्ष्य, ऐसा करना। क्या बात आई? कर्तव्य की बात आई। कौन सा कर्तव्य है हमें? कि हमारा आत्मा को शाश्वत सुख शांति मिले ऐसा पहले लक्ष्य कर लेना। शुरुआत करनी है तो यहां से शुरुआत होगी। एक सूत्र भी आए गुरुदेव ने, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, वही वास्तविक शुरुआत है। हमने स्वाध्याय मंदिर के कमरे में इतने बड़े बड़े अक्षर से लिखे हुआ और इस पर सारा आर्टिकल आ गया जागृति में, दो में बहुत बात हुई है। ये बात गुरुदेव ने अपनी साधना के अनुभव से दर्शाई है, बतलाई है कि मैंने शुरुआत कैसे की। ऐसे बोले नहीं, लेकिन बात ये समझने की है। गुरुदेव ने तो ये कहा कि मैंने तो इस प्रकार से शुरुआत की धर्म की। धर्म कोई रूढ़ी नहीं, धर्म कोई रिवाज नहीं, धर्म कोई मंदिर जाना नहीं, धर्म कोई माला फेरना नहीं, धर्म कोई उपवास करना नहीं। धर्म क्या चीज है? आत्मा की सुख शांति को प्राप्त करना हो धर्म है, तो पवित्रता से होती है। इसलिए वो कैसे होगा कि उसका लक्ष्य बजावे तो उसको लेना है, उसको प्राप्त करना है, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें कैसे भाव करना चाहिए उसका एक सारा विज्ञान है। तो ऐसा पहले लक्ष्य करना, यही इस दुर्लभ मनुष्य भव की सार्थकता है। हम जो है विचार करने वाले प्राणी हैं, जो पशु पक्षी होते हैं उनको इतनी विचार शक्ति नहीं है, तो वो तो अपने संयोग के पीछे ही अपना आयुष्य पूरा कर लेता है, तो क्या करते हैं वो भी संयोग के लिए। जो भूंड होगा वो जाएगा कूड़े के ढेर के पास या विश्वास के पास जाएगा, लेकिन मनुष्य नहीं जाएगा, उसमें विचार शक्ति है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है उनकी विचार शक्ति पशु में नहीं होती, मनुष्य में तो होती है। तो मनुष्य भव की वो सार्थकता है कि वो अपना शाश्वत कल्याण के लिए, शाश्वत शांति के लिए कोई अपना प्लानिंग कर सके, प्लान बिठा सके, ऐसी कोई कर्तव्य की जो बात है तो गुरुदेव सिंह ने इस रचना में ली है। यहाँ तो उतना ही ध्यान खींचा है कि अगर तू कोई काकतालीय न्याय से, काकतालीय न्याय मैंने क्या कि कौवा का बैठना और डाली का पड़ जाना, कोई वृक्ष की बड़ी डाली होती है जो 10-20 आदमी भी उसको खींच करके पार कोई कौवा बैठता है और पड़ जाता है तो पूरी सड़ गई हो, तो कौवा के भार से कोई डाली पड़ने वाली नहीं है, लेकिन पड़ने लायक थी और पड़ गई। ऐसा मनुष्य भव मिलना चारों गति में बहुत मुश्किल है। एक जीव को काल के प्रवाह में देखा जाए तो बहुत अनंत काल के पीछे एक मनुष्य भव मिलता है। बाकी तीन प्रकार के भव मिलते हैं, नारकी के, पशु के और देव के भव मिलते हैं, लेकिन नारकी के भव में उतनी पीड़ा है, उतनी पीड़ा है, उतने रोग है, हजारों रोग एक साथ चालू हो जाते हैं जन्म से, तो उसमें से उसके भाव जो है मुक्त नहीं होते। देवलोक में इतनी संपत्ति है पर इतने भोग उपभोग है कि परिणाम वहां ही इतने तृष्णा से लगे रहते हैं, जैसे यहाँ संपत्ति बढ़ती है तो साथ साथ तृष्णा बढ़ती है तो फुर्सत नहीं मिलती है, वैसे वहां इससे भी ज्यादा खराब हालत है। आप देखिए छोटे गांव में जाएंगे तो लोगों को फुर्सत मिलेगी, लेकिन बड़े सिटी वाले को नहीं मिलेगी। बंबई में तो हाय हाय ज्यादा है, फर्स्ट लाइफ जिसको कहते हैं, और न्यूयॉर्क में जाओ तो इससे भी फास्ट लाइफ, और देवलोक में जाओ तो इससे भी ज्यादा है। तो वो ये परिस्थिति ऐसी है कि वहां भी आत्म शांति के लिए विचार करने की एक सेकंड भी फुर्सत नहीं मिलती, बहुत काम रहता है, बहुत परिणाम उसमें संयोग में इतना दिलचस्पी से लगा रहता है कि जीव को अपना आत्म कल्याण के लिए सोचने के लिए समय नहीं मिलता, कैसे आयुष पूरा हो जाता है। लेकिन मनुष्य भव एक मध्यम कक्षा, मीडियम क्लास का एक भव है जिसमें बुद्धि की स्थिरता आत्मकल्याण के विषय में सोचने के लिए अधिक रहती है। ये ज्ञानियों ने ये बात अपने अनुभव से कही,
मीडियम जन के लिए मीडियम जन
नहीं, विचार करने के लिए न इतना पाप का योग है कि खिंचाव इसमें हो जाए, न इसका इतना पुण्य का योग है कि वहां खिंचाव हो जाए। देवलोक में बहुत खिंचाव होता है, पुण्य योग होता है, और पशु में और नारकी में बहुत खिंचाव रहता है,
बंद का कारण
है, और इधर मीडियम पोजीशन है, तीव्र नहीं है। देवलोक में बहुत तीव्र संपत्ति है तो बहुत भोग भोग में रहने के लिए वहां एक या 3 घंटे का ये सिनेमा का रोल होता है, या नाटक भी 2 अंक का 3 अंक का होता है, तो हम 2-3 घंटा वहां चला जाता है, पता नहीं लगता अपने को रख पाता है। इसलिए देवलोक में जो नाटारंभ होता है, अपसराएं नृत्य करती हैं, तो 10,000 साल निकल जाता है, कितना एक नाटक पूरा हो गए 10,000 साल चला जाता है, वहां पता ही नहीं चलता है कि कितना साल निकल गया, ऐसे नाटक वहां होते हैं, तो उतनी दिलचस्पी रहती है वहां, और परिणाम इतने मेले होते हैं। में मेले होते हैं, वहां से निकल कर तो जाते हैं खान में, खाने में, जैसे अपन कहते हैं कि भी हीरा का द्वीप है, खाने में हीरा का द्वीप क्यों हुआ, वहां उसको हीरा बहुत पसंद था। जिसको मोती बहुत पसंद था वो छीप में गया, वो भी एक कीड़ा है, छीप का एक कीड़ा है, उसका देह है छीप है, तो मोती में जीव होता है। फिर बाद में वो जो ये पहनते हैं उसमें निर्जीव हो जाता है, तो उसका मुर्दा है जो पहनते हैं उसको, लेकिन मूल में वो जीव पैदा होता है। कहां से हुआ कि देवलोक में उस टाइप का उसको बहुत पसंद था, जैसे जैसे राजा महाराजा संग्रह करता है ना जोरा का, ऐसे वहां इससे भी ज्यादा है, तो उतना वहां ऐसा पकड़ करता है, उतना रुचि करता है। तो कहते हैं कि या मति सा गति, जैसी तेरी मति होगी वैसी तेरी गति हो जाएगी। तो वैसे वो एक इंद्र में आता है, यहाँ से आयुष पूरा करते हैं, मर जाते हैं, मर जाते हैं मैंने शरीर छोड़ देते हैं, आता है एक इंद्र में, तो कोई खान में पैदा होते हैं, कोई समुद्र में मोती छिप में पैदा होते हैं, कोई सूख में, कोई ऐसे कोई ऐसे। इसका यही कारण है कि उनको रव काल में भी आत्मकल्याण करने के लिए कोई सूझबूझ नहीं रहती। तो यहाँ भी बहुत तकलीफ पाते हैं, तो तकलीफ को फलटाने में जीव लग जाता है, पर अनुकूलता बहुत आते तो उसमें फंसते हैं। आत्मकल्याण के लिए किसी को समय नहीं मिलता है, तो लोग कहते हैं कि भैया अगर तुझे ये भव मिला है, दुर्लभ भव, कैसा बोला, दुर्लभ का प्राप्त हुआ है। कभी बैलेंस शीट में व्यापारी को अपने सर्वैया कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं, सर्वैया बोलते हैं आपने बताया दिल्ली में भी, कहां तो मुनाफा रहता है कहां नुकसान रहता है, लेकिन मुनाफा भी नहीं हो गए और नुकसान भी नहीं हो गए, ऐसा कभी बनता है क्या? नहीं बनेगा। तो मनुष्य भाव तब मिलता है, नुकसान ज्यादा होता तो पशु और नरक में चला जाता, ये भाव का नुकसान, ज्यादा पुण्य बढ़ गया देवलोक में चला गया। मनुष्य भाव तो जब बैलेंस बराबर रहता है तब आता है, तो यहाँ बुद्धि भी बैलेंस रहती है, यहाँ बुद्धि का भी बैलेंस रहता है, खिंचाव नहीं रहता है, तो बुद्धि भी बराबर विचार करती है मुझे क्या करना चाहिए। मनुष्य भाव तो मिला है, तो 50 साल की जिंदगी है, अब क्या करना है, मेरा प्लानिंग तो 50 साल का नहीं होना चाहिए, शाश्वत अगर मैं हूं तो मेरा कोई शाश्वत प्लानिंग भी साथ साथ होना, ऐसा विचार करने के लिए जो कुछ हमारे पास समय है, तो ये मनुष्य भाव के लिए है। तो इसके लिए हम थोड़ा रस लेकर के थोड़ा समय निकाले, तो इसका भी विज्ञान है, और इसमें लंबा थोड़ा टाइम नहीं लगता है, बहुत अल्पकाल में बहुत बड़ा काम हो जाए, ऐसा एक बीज यहाँ बोया जाता है, जिसको बीज ज्ञान कहते हैं, ज्ञानी उसको क्या कहते हैं, बीज ज्ञान कहते हैं। अगर बीज यहाँ बोलेंगे तो फिर मुक्ति का फल जो आने वाला है, भले दूसरे भूमि तीसरे भूमि आए कोई सवाल नहीं है, लेकिन बीज तो यहाँ बोल हैं, जो भी समय मिला है उसमें बीज ज्ञान, बीज ज्ञान के लिए गुरुदेव ने उपदेश दिया है। जो अनेक प्रकार के भव भवांतर होते हैं उसके विभाग कितने हैं इसका विचार किया जाए, तो चार विभाग में मनुष्यों अनेक प्रकार के जीवों को बांटा है। एक मनुष्य है, जाति कितनी भी हो सकती है उसमें, लेकिन एक मनुष्य जाति ले लेते हैं, पेटा जाति कितनी भी हो सकती है, वैसे पशु पक्षी को कहते हैं जिसके शरीर आड़े होते हैं, मनुष्य के शरीर सीधे होते हैं, और जलचर हो, खेचर हो, आकाश में उड़ने वाले हो, पानी में रहने वाले हो, या भूचर हो, भूचर में जमीन पे चलने वाले हो, ये तीन प्रकार के जो प्राणी होते हैं उन सबकी एक जाति लिया जाती है जिसे अपन पशु पक्षी कहते हैं, पशु जाति। मनुष्य जाति एक पशु जाति के दूसरे जीव होते हैं, तीसरे देव जाति के जीव होते हैं, उसमें भी बहुत जातियां हैं, लेकिन एक देव जाति में सारा ले लिया। ऊंचे नीचे पूंजी के हिसाब से जैसे मनुष्य में दरिद्री होते हैं, श्रीमंत होते हैं, राजा होते हैं, अनेक प्रकार के उसमें भी जो है उसमें, लेकिन जाति तो मनुष्य की है। ऐसे देव में भी बहुत पुण्य वाले हैं, कम पुण्य वाले हैं, उसमें भी अनुचर है, सेवक है, स्वामी है, ऐसे बहुत हैं, कुछ भी जाति है। और चौथी एक जाति है नरक की, नाकी की, और नरक के जो जीव होते हैं उसमें भी सात स्थान है। स्वर्ग है तो 16 स्वर्ग है, उस पर और भी विमानें बहुत हैं, लेकिन नरक में तो 7 स्थान है। वो भी जो पाप के फल होने वाले होते हैं, बहुत पाप होते हैं, जिससे उसमें ज्यादा पाप हो, अधिक पाप हो, इससे अधिक, इससे अधिक, ऐसे। तो दो तो पुण्य के फल के स्वरूप है, मनुष्य और देव जो है वो तो पुण्य के फल में उद्भव मिलते हैं, दो प्रकार के। और पाप के फल में ये पशु और नरक, ऐसे दो भाव मिलते हैं। ऐसे चार जाति में से पुण्य योग से हम लोग, मैंने हमारा जीव जो है वो तो मनुष्य जाति में अभी है, वर्तमान में जो है वो मनुष्य जाति में है। तो हमको पता नहीं है कि पूर्वजों में हम लोगों ने कैसे कैसे पुण्य किए, जिसलिए हमको मनुष्य भाव मिला है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। किंतु मिला है उसको, बात को प्रत्यक्ष है, अनुभव गोचर है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, इस पर गुरुदेव का यह वचना है कि ये क्षण भंगुर है। पहले तो क्या है कि जो मनुष्य वर्ग है वो क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मैंने क्या है कि आयुष्य बहुत कम है, 100 साल भी काल के प्रभाव में ज्यादा नहीं है। 100 साल तो कोई जिंदा रहता है, वरना कोई तो मनुष्य माता के गर्भ में मरता है, जिंदा वारी नहीं आता। कोई जन्म के काल में मर जाता है, कोई कितने दिन में, कोई कितने मास में, तो वहां तो कोई कर्तव्य अकर्तव्यता उनके लिए तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बचपन में जो भी मरता है वो भी बचपन में कोई ज्यादा विचार शक्ति होती नहीं है, बहुत कुंठित विचार शक्ति होती है, तो बचपन में भी कर्तव्य अकर्तव्यता ज्ञानियों ने ये कहा है कि 8 साल के बाद जो लड़का है उसकी विचार शक्ति अगर तेज होता है तो 8 साल के बाद उसकी विचार शक्ति अच्छी होती है, जो अपने सुख दुख को, प्रयोजन को समझने में थोड़ा क्षमता वाला हो जाता है। बाकी वास्तव में तो हम पता नहीं, अपने यहाँ कहते हैं कि 16 साल के बाद ही कुछ अक्कल आती है, तो समझदारी आती है, तो 16 साल के बाद आती है, क्योंकि वहां से दुनियादारी की समझ चालू हो जाती है। तो आयुष कितना भी है इसका किसी का कोई खास पता नहीं लगता, आदमी वो नहीं जान सकता कि मैं कितने साल तक जिंदा रहूंगा, कि किसी को पता नहीं है। इसलिए एक बात तो वो होगी कि हमारा जिंदा रहना वो अनिश्चित काल है, निश्चित काल नहीं है। देवलोक में ऐसा नहीं होता, देवलोक में मिनिमम आयु 10,000 साल का है, फिर मैक्सिमम तो लाखों करोड़ों अरबों साल का भी होता है वहां पर, जिसका जितना पुण्य होता है। लेकिन इधर जो मनुष्य आते हैं उनका मैक्सिमम आयु करीब 100 साल से ज्यादा नहीं गिना जाता, इसके पहले एवरेज तो 70 के करीब करीब है, आजकल 70 के करीब करीब है। फिर भी वो अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं है, कोई जवान उम्र में भी चला जाता है, कोई बूढ़ा होकर भी जाता है, कुछ भी हो, जब हमारा जिंदा रहना अनिश्चित है तो हमारा कर्तव्य को हम समझे, ये बात कोई समझदारी भी है। अगर हमारा कर्तव्य को हम नहीं समझे तो फिर पशु जैसा इस प्रकार का विचार नहीं करता है, जैसे हम भी नहीं करते हैं। जैसे एक गाय भी अपने बछड़े को दूध पिलाती है, या एक जो ये चकली को क्या बोलते हैं,
चिड़िया
भी इनके बच्चे को एक दाना दो दाना खिला देती है कहीं से ले आकर। वैसे हम भी हमारे परिवार के लिए तो सारी जिंदगी जो कुछ करते हैं तो अपने परिवार के लिए करते हैं, तो वो एक फोटो मनुष्य की और पशु की विचार शक्ति में कोई लंबा अंतर तो नहीं हुआ, कोई लंबा फर्क तो नहीं पड़ा। तो इसलिए जो अनिश्चित आयु है थोड़ा है, उसमें भी हम कोई ऐसा कार्य करें कि जिससे हमारा कर्तव्य से हम दूसरे यहां से हमारा देश उत्तर के, आत्मा तो मर के नहीं शाश्वत है, पुनर्जन्म होता है हरेक आत्मा का, तो वो कैसे हो कहाँ हो इसका कोई दीर्घ दृष्टि से हम विचार करें। इसका विचार को क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि का विचार कहते हैं, कि कहीं भी जन्म जन्मांतर में भी हम जाए तो इसकी व्यवस्था अगर हम यहां से कर सकते हैं तो हमें कर लेनी चाहिए। क्यों कि वर्तमान में भी हम पूर्व कर्म के प्रारब्ध को भोगते हैं, क्या होता है प्रारब्ध को भोगते हैं कि नहीं भोगते, प्रारब्ध को तो मानना पड़ता है, और इसका तो गणित भी है, ये ज्योतिषादि जो है तो इसका ही गणित है, भले इसके जानने वाले कम हो लेकिन है तो कोई गिनती का हिसाब किताब का तो विषय है ही। तो इसलिए जब प्रारब्ध बनता है तो किससे बनता है, किस प्रकार से बनता है, हम इस प्रकार के प्रारब्ध को क्यों भोगते हैं, दूसरे प्रकार के प्रारब्ध को क्यों भोगते हैं, उसमें भी बहुत विचित्रता है। जैसे किसी के पास तंदुरुस्ती है लेकिन पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो तंदुरुस्ती नहीं है, किसी के पास दोनों नहीं है तो किसी के पास दोनों भी है, ऐसे अनेक प्रकार की चित्र विचित्रता तो उसमें भी देखी जाती है। तो वास्तव में इसके पीछे कौन सी ऐसी व्यवस्था है, ये बात अगर हम समझ सकें तो हमारा जो आने वाला नया प्रारब्ध है, वर्तमान भव में तो पूर्व भव में किए हुए जो भी हमारे कर्म हैं उसके फल स्वरूप जो प्रारब्ध है उसको भोगते हैं, लेकिन अभी जो कर्म करते हैं उसके फल अगले आने वाले भव में भोगने होंगे, तो उसमें क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसके लिए विचार करने के लिए गुरुदेव ने कुछ बातें यहां कही हैं। कि एक तो सभी हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा संयोग है वो भी क्षण भंगुर है, पर संयोग पलटते हैं वो तो हमारी नजर में आता ही है, कोई दरिद्री है वो श्रीमंत भी बन जाता है, वो श्रीमंत है वो दरिद्री भी बन जाता है, कोई रोगिष्ठ है वो तंदुरुस्त भी होता है हो जाता है, कोई तंदुरुस्त है वो रोगी भी हो जाता है, ओवरनाइट जो बड़ा फेरफार हो जाता है, तो मानना पड़ता है कि प्रारब्ध जैसी कोई चीज है जीवन में, तो ये क्षण संयोग जितने भी हैं वो हर हमेशा पलटते रहते हैं। हमारी भी पूंजी एक तरीके हर साल नहीं रहती, और हर महीने नहीं रहती, हर दिन नहीं रहती। इसका मतलब क्या है कि ये पलटने वाली चीज है, इसमें पलटना ये कुदरती व्यवस्था है, प्रारब्ध के अनुकूल होता ही रहता है। तो उस संयोग के लक्ष्य से होने वाले जो परिणाम मैंने भाव, संयोग के लक्ष्य से मैंने क्या कि सारे मनुष्य के जितने भी कहीं भी हो, सब मनुष्य अपने संयोग को बढ़ाना चाहते हैं, वृद्धिगत करना चाहते हैं, या उसको संभालना चाहते हैं, कि उसमें कमी तो हो गई नहीं। कितना भी बढ़े तो अच्छा है, लेकिन कमी तो होनी ही नहीं चाहिए। तो गुरुदेव ने एक आधे वचनामृत में सारे मनुष्य के परिणाम का हिसाब लगा दिया। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने संयोग के लक्ष्य में ही रहते हैं, उसका दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। तो इस जनता क्या लक्ष्य है कि हमारे संयोग ठीक रहना चाहिए, जैसे हम चाहते हैं। फिर हमारी चाह जो है बढ़ती रहती है, चाह एक सी नहीं रहती, बढ़ती रहती है। फिर भी उसमें कॉमन फैक्टर क्या है कि संयोग। इसलिए ये बात कहा कि इसके वशा, इस संयोग के लक्ष्य से वशा हमारा लक्ष्य हमारे आत्मा में हमें क्या करना कर्तव्य है उस पर नहीं जाता। क्या कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य जीव का और सभी प्राणियों का एक ही लक्ष्य रहता है कि हमारा संयोग को हम संभाले, जैसे कैसे भी हारे संयोग को हम संभाले। और संयोग कैसे हैं, कोई नित्य नहीं रहते। परिवार में आने वाले सदस्य भी जो संयोग में है वो भी नित्य नहीं रहते। कोई जल्दी जाते हैं, कोई देरी से जाते हैं, कोई नए आते हैं, पुराने जाते हैं, आवागम अच्छा हो जाता है। एक सी संख्या भी नहीं रहती है परिवार की, और हमारा लक्ष्य उसी पर ही रहता है। तो ऐसा कहकर के ये बताया श्री गुरु ने कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आत्मकल्याण पर क्यों नहीं जाता। और वास्तव में जो कोई हमारा खास विषय है धर्म में भी, खास विषय जो हमारा है वो आत्मसुख का विषय है। कौन सा? कि आत्मिक शांति मिले, आत्मिक सुख मिले, या तो सद्गुण पूर्वक सुख मिले, दोष करते करते जो सुख मिले वो नहीं चाहते। वो तो और दुनियादारी का विषय है। जगत में जो सुख का हिसाब किताब है वो दूषित परिणाम से होने वाला सुख का है, जिसमें दोष होता है, अवगुण होता है जीव के भाव में, और साथ साथ भी अनुकूल संयोग का सुख जो है वो भोगने में आता है या ठिकाने में आता है। धर्म के क्षेत्र में जो अंतर है वो दूसरा प्रकार का है। उसमें आत्मा का निराकुल सुख शांति कैसे मिले, चाहे जैसे संयोग हो, लेकिन हमें हमारे आत्म शांति कैसे मिलती रहे, ऐसी कोई व्यवस्था है वो धर्म का क्षेत्र में इसका विचार किया गया है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तेरे जो भाव हैं, परिणाम मैंने भाव है, वो तो लगातार संयोग के पीछे जो चल रहा है उसमें तुझे शांति नहीं। थोड़ा भीतर में तुम झांक करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि ऐसे भावों में कहीं जीव को शांति नहीं मिलती है। चाहे संयोग अच्छे हो जाए, तो भी शांति नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होता कि संयोग अच्छे हो जाने से शांति मिल जाती है और संयोग कम हो जाने से अशांति मिलती है, ऐसा नहीं है। शांति अशांति का जो स्टैंडर्ड है, शांति अशांति का जो कुल विज्ञान है, वो जीव की चाहना पर होता है। जितनी चाह को हम कहेंगे चलती भाषा में तृष्णा, जितनी तृष्णा ज्यादा होगी उतनी अशांति बढ़ेगी, जितनी तृष्णा कम होगी उतनी अशांति कम होगी। उसका संबंध संयोग से नहीं है। जिसको बहुत जरूरत है उसको अशांति बहुत रहेगी। ऐसे अपन सुबह बात चली थी कि जो पश्चिम के देश हैं अपने, यूरोप के, अमेरिका के, वेस्टर्न कंट्रीज, वो धनाढ्य देश हैं। हमारे यहाँ जो श्रीमंत है वो वहाँ तो गरीब कहलाता है, वहाँ तो मल्टी मिलियनर है, लेकिन वहाँ शांति नहीं, बहुत अशांति है। इतनी अशांति है कि वो लोग इधर हिंदुस्तान में आते हैं, आप पुष्कर में जाओ, जगन्नाथपुरी में जाओ, बहुत लोग पड़े हैं, सैकड़ों की और हजारों की तादाद में परिणत लोग पड़े हैं। क्या पैसा नहीं है, वो बात नहीं है, ना उनके पास बहुत पैसा होने पर भी शांति इतनी होगी कि उनको वहां जिंदा रहना तकलीफ होगी, मुश्किल होगी, तो इधर आने लगे। हम लोगों ने देखा था अध्यात्म विद्या अगर विश्व में कहीं है तो भारत में। धार्मिक फिलोसॉफी सारे विश्व में भारत के अलावा कहीं भी नहीं है। वहां भौतिक विज्ञान बहुत है, उसकी प्रगति, उसका विकास, ये सब कुछ है, लेकिन अध्यात्म विद्या वहां नहीं है। अध्यात्म विद्या भारत में है और ये भी खास करके हिंदू धर्म में और जैन धर्म में ज्यादा है। बौद्ध में, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में उतनी नहीं है। जितना विचार हम लोगों ने किया है उतना विचार दूसरे लोगों ने इस विषय में नहीं किया है। इसलिए यहां पर गुरुदेव का यह उद्देश्य है कि तुम अपनी आत्म शांति के बारे में सोचो। अकेले आप संयोग के बारे में सोचते हो सारे दिन और एक सेकंड भी मेरा क्या होगा, आयुष तो कभी भी पूर्ण हो सकता है, वो तो अनिश्चित है, तो मेरा फिर बाद में क्या होगा, इसके लिए सोचने के लिए हमेशा कितना समय निकालते हो, आधा घंटा, घंटा, चार घंटा, कितना निकालते हो? कि जिनको बहुत व्यवसाय है वो तो करीब निकाल ही नहीं सकता। बहुत बहुत तो जाकर क्या करते हैं कि अपने अपने मंदिर में जा करके जो भगवान है उनका दर्शन कर लेते हैं, या कोई थोड़ा माला फेर लेते हैं, या कोई दयादान कर लेते हैं, या कोई तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, तरह थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जैसे थोड़ा संतोष मिलता है, हमने कुछ किया तो सही, कुछ तो किया है, तो इस जन्म में कुछ किया है तो अगले जन्म में इसका कुछ फल भी मिलेगा। लेकिन इसकी कोई पूरी समझदारी नहीं है। जैसे हमारे कारोबार में हम बिना समझदारी कोई काम नहीं करते, कोई कितना भी बता दे सबको कि ऐसे काम करने में इतना मुनाफा होता है, ऐसे काम करने में इतना मिल जाता है, तो भी हम पूरी जांच तलाश किए बिना ऐसे अंधेरे में कूदते नहीं। एक धर्म के क्षेत्र में हम अंधश्रद्धा से चलते हैं बिना विचार, अगर किसी की सांगोपांग विचार किए बिना कर लेते हैं और संतोष मानते हैं, वो कर्तव्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्यों? कि हमारा कारोबार तो हमारा 150 साल का व्यवस्था का विषय है, और धर्म है वो हमारे आने वाले अनेक भव भवांतर के व्यवस्था का विषय है। दोनों में क्या अंतर है? एक शॉर्ट टर्म की पोजीशन को देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म की पोजीशन को देखना होता है। तो इसके विषय में कोई विशेष विचार करने के लिए हमारा रस भी होना चाहिए और हमारे पास समय भी होना चाहिए। दोनों बात अगर होती है तो इस विषय में अच्छी तरह से हमारा कर्तव्य और अकर्तव्य को हम समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि क्षणभंगुर अनित्य अनिश्चित संयोग के लक्षक हैं, होने वाले परिणाम मैंने होने वाले भाव, कुछ भी करेंगे तो भी वो पलटा मारेगा। कब पलटा मारेगा उसको पता नहीं है, क्योंकि पूर्व प्रारब्ध आदिन है, आयुष्य भी पूर्व प्रारब्ध आदिन है। क्या हमारे शास्त्र में कर्म ग्रंथ में आयुष्य के विषय में ऐसी बात बताई है कि कोई भी जीव वर्तमान आयुष्य को भोगता है, वर्तमान आयुष्य को भोगते भूलते उसके 2/3 जो आयुष्य भोगने में होता है बाद ही वो नया आयुष्य प्राप्त करता है। चाहे मनुष्य होकर मनुष्य का करे, पशु का करे, देव का करे या नारकी का करे, कुछ भी करे, वो तो जैसे पाप पुण्य पाप किए होंगे वैसे ही, जैसे रस्सी बनती है तो उसमें कितने भी छोटे छोटे तार होते हैं फिर एक रस्सी बनती है। ऐसे 2/3 जीवन में जितने भी पुण्य पाप के तार हैं उस तार की एक रस्सी बनेगी और इस रस्सी का जो बंधन है वो आयुष्य का बंधन है। जैसे हम हमारे आयुष्य जो भी जितने पूर्वभव से लेके आए उसमें 1 सेकंड कोई कम भी नहीं कर सकता, 1 सेकंड कोई बड़ा भी नहीं सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकता, दूसरा भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसी एक कुदरती वस्तु व्यवस्था है। तो उसमें हम बंधन में आए मनुष्य भव में, मनुष्य भव की जो आयुष्य की रस्सी है तो उसमें काल तक चलेगी। उसमें ऐसा नहीं है कि तंदुरुस्त जो है वो नहीं मरता है, ऐसी बात नहीं है। कोई सोने की भस्म खाएगा, हीरे की भस्म खाएगा, कुछ भी खाएगा। हमारे वो भगवान दास जी थे और सागर वाले बड़े सेठ थे, करोड़पति थे, तो आयु वो क्या बोलते हैं
आयुर्वेदिक
दवाई अपने अपने घर पे ही बनाते थे। मोती की भस्म बनानी हो तो घर पे, सोने की भस्म बनानी हो तो घर पे, हीरे की भस्म बनानी हो तो भी घर में ही उन्होंने औषधालय रखा था। दवाई बनाने के लिए अपने मकान में ही उन्होंने औषधालय, वैद्य जी को घर पे बुला करके अपनी चीज दे करके वहीं बना लेते थे। उस जमाने में 5,000 रुपया तोला के दरार दवाई बनानी हो तो अपने घर पे बना लेते। लेकिन आयुष्य कोई दवाई के साथ चलने वाला नहीं। तंदुरुस्त से तंदुरुस्त आदमी हो और सोवे तो जगे ही नहीं, क्या करे? लड्डू खाते खाते चले जाए क्या करे? लड्डू हाथ में या मुंह में रह जाता है, ऐसा बनता है। बहुत बढ़िया सोल्जर जैसा शरीर है, ऐसा देखा है हमने, भगवान शरीर हो पूरा तंदुरुस्त हो और बात करते करते हो, बात करते करते चलेगा, ऐसा होता है। मतलब क्या कि पूर्व भव में उतना ही आयुष्य लेकर वो आया है। तबीयत का बिगड़ना एक बहाना है, लेकिन बहुत साल तक बीमार रहने वाला ऐसे ही आयुष्य को भोगता है बीमारी में, ऐसा भी बनता है। तो इसलिए जो क्षणभंगुर अपना संयोग है उसमें पलटा कभी भी आ सकता है, तो पलट तो वो पलटेगा, एक क्षण में पलटा हो जाएगा, किंतु जब शाश्वत रहने वाला आत्मा का लक्ष्य करते हैं तब परिणाम शुद्ध होता है और वो शुद्ध परिणाम शुद्ध रूप से शाश्वत रहने वाला है। क्या कहते हैं गुरुदेव? कि ये पुण्य का भोगना, पाप का भोगना, उसका दंड करना, ये कोई शाश्वत चीज नहीं है। शाश्वत चीज एक आत्मा है। क्या शाश्वत चीज आत्मा है? भले ही वो जन्म जन्मांतर में भटकती है, फिर भी है शाश्वत। तो उनकी शाश्वत शांति के लिए और शाश्वत सुख के लिए उसे क्या करना चाहिए? ऐसा एक विचार जगाने के लिए ये वचनामृत है। क्या हम मकान बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? कि कभी भी गिरे नहीं, ऐसा बनाना चाहते हैं। ऐसा बन नहीं सकता वास्तव में, लेकिन हमारा अभिप्राय क्या है? हम कपड़ा लेंगे तो जल्दी फट जाए, ऐसा नहीं करेगा। अरे एक रोटी बनाने की सावड़ी तवा लेंगे माटी का, तो भी देखेंगे कि ड्यूरेबिलिटी किसकी ज्यादा है, कौन सी चीज टकला दी चीज हम चाहते नहीं। तो हमारा सुख भी, हम हमारी शांति भी शाश्वत कैसे मिले? इस दिशा में कोई हमारे पास विचार है या कोई कर्तव्य है या कोई इस दिशा में कुछ हम सोच सकते हैं? इसकी कोई व्यवस्था बन सकती है या नहीं बन सकती है? कहने का अभिप्राय कहते हैं कि शाश्वत रहने वाला ये आत्मा जो कभी नहीं मरता है, भव भवांतर होता है, उसमें देह बदलता है। देह बदलता है जैसे कपड़ा फटता है नया पहनते हैं, वैसे ही है। ऐसा एक श्लोक आता है भगवद गीता में, ऐसा एक श्लोक आता है, वांसांसि जिघ्राणि यथा विहाय समानि जन्नाति नरोपराणि। जैसे कोई वस्त्र बदलता है पुरुष, वैसा ये आत्मा रूपी पुरुष अपना शरीर को बदलता है। तो कभी मरता नहीं है, वो शाश्वत चीज है। तो वो शाश्वत चीज है। गुरुदेव का यही कहना है कि जब तेरा आत्मा शाश्वत है तो तेरी सुख शांति भी शाश्वत है। ये दर्शाने का हमारा प्रयोजन है। लेकिन ये सुख शांति कैसे उपलब्ध हो, ये रस लेकर के समझने लायक चीज है। इसके समझने के लिए अगर रस पैदा होता है किसी को, तो इसका भी एक विज्ञान है, इसकी एक व्यवस्था है, और उसको अच्छी तरह जो भी जो आत्माएं मोक्ष में गए, मोक्ष मैंने क्या, जन्म मरण का नाश हो जाना, भविष्य में कोई जन्म मरण नहीं होना, मुक्त आत्मा को जन्म मरण कभी नहीं होता है। तो ऐसे आत्मा मुक्त हो जाए तो उसमें उसको शाश्वत शांति मिलती है, शाश्वत सुख मिलता है, कभी वो आत्मा आगे जाकर के दुख को नहीं भोगने वाला। इसके लिए क्या करना? जो धर्म के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ विचारधारा है वो किसी लाइन पर है, उसी लाइन पर ध्यान खींचने के लिए यहां गुरुदेव बात करते हैं कि आत्मा का तुम लक्ष्य करो, कि ये शाश्वत रहने वाले आत्मा में, आत्मा के जो परिणाम है मैंने भाव है वो शुद्ध होवे। क्या परिणाम के भाव की दो जाति है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। अशुद्ध जाति से जन्म मरण होते हैं, जन्म मरण अशुद्ध जाति के भावों का फल स्वरूप है, और शुद्ध परिणाम के जो जाति है, शुद्ध भाव जो है, वो शुद्ध भाव अगर आत्मा करती है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। शुद्धि को हो भावों की या पवित्रता को, अशुद्धि को हो भावों की या मलिनता को, ये मलिनता और पवित्रता तो बहुत प्रसिद्ध है बात, भावों की जो अशुद्धि है, जैसा अपन कहते हैं तो बहुत माया कपट करता है, तो बहुत ऐसा परिणाम करता है, तो क्या कहते हैं इनके परिणाम है, विचार है, बहुत मैले हैं, क्या कहते हैं अपन, बहुत मैले भाव है।